हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 की शुरुआत हम आज करेंगे, श्लोक क्रमांक 1, कर्मयोग। और इसमें ध्यान दीजिएगा कि प्रभुपाद जी कर्मयोग को केवल कर्मयोग ही नहीं बल्कि भक्ति योग के एंगल से भी समझाएंगे। अर्जुन उवाच, जायसी चेत कर्मणस्ते मता मता बुद्धिर जनार्दन, तत् किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। तात्पर्य, श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशुद्ध वर्णन किया है और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की स्थिति की है वह है बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत। कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्रायः एकांत स्थान में चला जाता है, किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी। अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चातुरी पूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था, किंतु एक निष्ठ शिष्य होने के नाते उसने ये बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्मयोग अथवा कृष्ण भावना भावित कर्म की विस्तृत व्याख्या की। एक चीज हमको इसमें समझनी पड़ेगी कि जब हम कुछ सुनते हैं तो प्रायः सुनने के समय हमारी खुद की चेतना का फिल्टर उसमें लगा लेते हैं। जैसे एक व्यक्ति, एक भक्त बता रहे थे, उन्होंने अपनी क्लास में च्यवनप्राश की महिमा के बारे में बताया तो बाद में एक भक्त उनके पास आया और बोला, प्रभु जी बहुत सुंदर क्लास दिया आपने, मैं आपकी बात का निश्चित रूप से पालन करूंगा। तो उन भक्त ने बोला कि आप क्या अच्छा लगा आपको और आप क्या पालन करेंगे। तो उन्होंने बोला कि हाँ, मैं आपकी प्रवचन से समझ गया कि च्यवनप्राश खाने से हमको स्वास्थ्य का लाभ होगा, अब मैं नियमित रूप से च्यवनप्राश खाऊंगा। तो कृष्ण भावना के पूरे प्रवचन में खाली उसने यही स्वीकार किया कि उसे च्यवनप्राश खाना चाहिए नियमित रूप से। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि भगवान ने दूसरे अध्याय में ऐसा नहीं बोला है कि अपने कर्मों को त्याग देना चाहिए, बल्कि भगवान ने मैं बताता हूँ कौन से श्लोक में बोलते हैं। वो बोलते हैं, दूरेण ही आवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धौ शरणम अन्विच्छा कृपण फलहेतव। कि जो लोग बुद्धियों की शरण लो और उसके द्वारा जो बुरे कर्म है उनसे दूर रहो, तो उनको ये लग रहा है या फिर स्थिति प्रज्ञ के जो वर्णन हुआ, इंद्रियों को खींच लेता है और इंद्रियों को संयमित कर लेता है, तो इससे अर्जुन को ये लग रहा है कि उसको कर्म नहीं करना चाहिए। अपनी इंद्रियों को संयमित करने का अर्थ वही सोच रहे हैं कि उन्हें कर्म नहीं करना चाहिए, और इसीलिए वो अर्जुन उनसे प्रश्न कर रहे हैं कि ठीक है, अगर आप बोल रहे हैं कि सकाम कर्म से ये बुद्धि योग श्रेष्ठ है तो मुझे तो ये दिख रहा है कि ये युद्ध मैं अपनी भौतिक इच्छा के लाभ के लिए कर रहा हूँ, इसमें भगवान की भक्ति कहाँ से आ रही है? लोगों को मारना काटना, गुरुजनों को मारना, तो ये जब सकाम कर्म से कई गुना श्रेष्ठ है बुद्धि योग, तो मुझे आप इस युद्ध में क्यों लगा रहे हैं? तो हम लोग भगवान के एडवाइजर बनने का प्रयास न करें, भगवान की आज्ञा का, भगवान की एडवाइस को, भगवान की आज्ञा को, भगवान की सलाह को पालन करने का प्रयास करें तो अच्छा होगा। और इस प्रकार के चतुर वचनों से हमारा लाभ भी होने वाला नहीं है। प्रभुपाद जी यहाँ पे एक और अच्छी बात बता रहे हैं। प्रभुपाद जी ये नहीं कह रहे कि एकांत भाव, एकांत जगह में जाकर नाम जप नहीं करना चाहिए, परंतु अगर आप ध्यान दें तो उसमें लिखा है कि कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना। कृष्ण भावनामृत का दर्शन ये नहीं कहता है कि व्यक्ति खाली कुछ कुछ कार्य नहीं करे और घर में बैठा रहे, बस हरे कृष्ण जप करे। ये कोई बहुत उन्नत चेतना वाले भक्त के लिए संभव हो सकता है, लेकिन प्राय व्यक्तियों के लिए आवश्यक है कि हरे कृष्ण मंत्र का नियमित रूप से जप करें, साथ ही साथ अपने हर कर्म को भगवान से जोड़ने का प्रयास करने का प्रशिक्षण प्राप्त करें और इसके द्वारा अपने हृदय को शुद्ध करें धीरे धीरे करके। तो यहां पे बुद्धि योग या कृष्ण भावना का आश्रय लेकर के अर्जुन भागना चाहते हैं और इस चीज को भगवान पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन अर्जुन अपने प्रश्नों को आगे और बताएंगे भगवान को। जरा देखिएगा दूसरे श्लोक में, श्रील बलदेव विद्याभूषण जनार्दन और केशव शब्दों की व्याख्या बहुत स्पष्ट रूप से बड़े रोचक ढंग से करते हैं। वो कहते हैं कि जनार्दन का अर्थ है उन लोगों का जो अपना परम कल्याण चाहते हैं, वो भगवान से जाकर के प्रार्थना करते हैं, भगवान ही उनके प्रार्थना के विषय हैं, इसलिए उनको जनार्दन कहते हैं। और केशव का अर्थ है जो ब्रह्मा और शिव जी को भी नियंत्रण में रखते हैं। शिव जी भगवान कृष्ण से हरिवंश में कहते हैं, क इति ब्राह्मणो नामा ईशो अहम सर्वदेहिनाम आवाम तवांग संभूतौ तस्मात केशव नाम भक। का अर्थ है ब्रह्मा और ईश का अर्थ है भगवान शिव, जो सभी जीवात्माओं के स्वामी हैं। वो दोनों ही भगवान के श्री कृष्ण के शरीर से उत्पन्न होते हैं, इसलिए उनका नाम केशव है, भगवान कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं। तो यहाँ अर्जुन बोल रहे हैं कि आप केशव, यानी जिनकी आज्ञा ब्रह्मा और शिव भी टाल नहीं सकते, उनको मैं विनयपूर्व विनती कर रहा हूँ अपने श्रेय के लिए, जो मेरे लिए सबसे अच्छा है उसकी जानकारी के लिए, ताकि आप मुझे बताएं स्पष्ट शब्दों में कि मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि गुरु के पास जाकर के ऐसी ही जिज्ञासा करना चाहिए। जिज्ञासा ये नहीं होनी चाहिए कि हमारे शरीर का कष्ट कैसे चला जाएगा, बल्कि हमारा श्रेय क्या है, हमारा सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक लाभ किस चीज में होगा, इस चीज को जानना चाहिए गुरु के पास जाकर के, ये हमारा कर्तव्य है। दूसरे श्लोक को देखेंगे, व्यामी श्रेणे वाक्येना बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हम आप्नुयाम। आपके व्यामिश्रित यानी कि अनेकार्थक बहुत बहुत बातों पे भगवान ने बोला, तो इस कारण से अर्जुन निश्चयात्मक बुद्धि नहीं उत्पन्न कर पा रहे थे कि इन्हें निश्चय रूप से क्या करना चाहिए। आपके व्यामिश्रित अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। तात्पर्य, पिछले अध्याय में भगवद्गीता के उपक्रम के रूप में सांख्य योग, बुद्धि योग, बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह यानी कि इंद्रियों को संयम करना, निष्काम कर्म योग तथा नवदीक्षित की स्थिति जैसी विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया, किंतु उसमें तारतम्य नहीं था, समन्वय नहीं समझ में आ रहा था। कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होगी, अतः अर्जुन इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। यद्यपि श्री कृष्ण वाक् चातुर्य से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्ण भावनामृत क्या है, जड़ता है या कि सक्रिय सेवा। दूसरे शब्दों में अपने प्रश्नों से वह उन समस्त शिष्यों के लिए जो भगवद्गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। अर्जुन को भगवान मुंह में डाल रहे हैं ताकि हम लोग ठीक से समझ सकें, क्योंकि प्रायः समाज में सभी लोग घरों में रहते हैं, समाज में रहते हैं, सामाजिक क्रियाएं भी करनी पड़ती हैं, तो कैसे अपनी सामाजिक क्रियाओं करते हुए भी व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की तरफ आगे बढ़ सकता है, उसके बारे में भगवान इस अध्याय में बताएंगे। कर्मयोग भक्ति योग की शुरुआत है। प्रायः लोग भगवद गीता में ऐसा कहते हैं कि कर्मयोग ही सर्वश्रेष्ठ है। कर्मयोग सर्वश्रेष्ठ जरूर नहीं है, लेकिन कर्मयोग भक्ति योग की शुरुआत है जिसमें हम अपने कर्मों को कृष्ण को समर्पित करना शुरू करते हैं, कर्मफल को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करना शुरू करते हैं। भक्ति योग में कर्म डायरेक्ट भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होता है, इस अंतर को हमको पहले समझ लेना चाहिए। कर्म योग को केवल कर्म नहीं मानना चाहिए, क्योंकि लोग कर्म योग का आधार लेकर के केवल कर्म करने पर जोर करते हैं, एक्चुअली वो सकाम कर्म होता है, अपनी इंद्रिय तृप्ति वाला कर्म, और कहते हैं कि हमें भगवान की पूजा करने की जरूरत नहीं है। तो इन सब बातों को, इन सब गलत धारणाओं को भगवान क्लियर करेंगे, तो उसको देखते हैं भगवान क्या बोलते हैं। श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण अपनी कमेंट्री में बहुत सुंदर बात बोलते हैं कि वामिश्रित वाक्य क्या होता है। वामिश्रित वाक्य का अर्थ है, अनेकार्थक वाक्य का अर्थ ये है कि कोई वाक्य जो बताए कि बुद्धि को सांख्य योग और कर्म योग की तरफ लेके जाना है, दोनों ही साध्य हैं, क्षमा कीजिएगा, दोनों ही साधन हैं, साधन पद्धति हैं और साध्य का निर्णय करते हैं। तो एक में सांख्य योग में हम अपनी इंद्रियों का शरण करते हैं, उनको कर्मों से बचाते हैं, और कर्मयोग में हम कर्मों को, अपने इंद्रियों को कर्म में लगाते हैं। तो इन दोनों ही बातों को बता करके अर्जुन समझ नहीं पा रहे हैं कि हम सांख्य योग के बारे में, सांख्य योग को स्वीकार करें, सांख्य योग की साधना को स्वीकार करें कि कर्मयोग की साधना को स्वीकार करें। तो एक शब्द और आ रहा है, बुद्धिम मोहय सीव में, इवा शब्द इसमें आ रहा है। वो कह रहे हैं कि इन सब वाक्यों से ऐसा लग रहा है कि आप मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं। वास्तविकता में आप सभी जीवात्माओं के स्वामी हैं, जैसे कि पिछले शब्द श्लोक में जनार्दन शब्द आया था, तो इसलिए आप मुझको मोहित नहीं करेंगे। लेकिन मेरी बुद्धि में जो दोष है, उस कारण से मुझे ऐसा लग रहा है। इसलिए इवा शब्द का अर्थ है उनको ऐसा लग रहा है कि भगवान उनको मोहित कर रहे हैं, भगवान मोहित नहीं करना चाहते। इसलिए कृपया एक वाक्य बताएं जिसके द्वारा मैं दोनों ही जो साधना पद्धति हैं उनको छांट सकूं कि क्या श्रेष्ठ है मेरे लिए करने के लिए। श्रुति में कहा गया है, न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेन एकानामृतत्वम अनासुर परेणनाकम निहितम गुहायाम विभ्रजायते यद वेततो विशंति। केवल कर्तव्यों का पालन करके, बच्चे पैदा करके या धन के द्वारा, केवल संन्यास लेकर के, क्षमा कीजिएगा, केवल कर्तव्य पालन करके या बच्चे पैदा करके या फिर धन देकर के भी व्यक्ति अमृतत्व को प्राप्त नहीं होता, जो कि संन्यास ही प्राप्त कर लेते हैं, संन्यास आश्रम को स्वीकार करके, और ऐसी अमृतत्व जो कि स्वर्ग के भी परे है, ये महानारायण उपनिषद में बताया गया है। नास्ति अकृतः कृतेना, और कहने का अर्थ ये है कि वो शाश्वत पद व्यक्ति कर्मों के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता, ये मुंडक उपनिषद में है। तो इस प्रकार के सब शब्द सुनते हैं, वाक्य सुनते हैं, तो व्यक्ति सोचता है मैं कर्म कर रहा हूं तो भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। तो इन सब वाक्यों से उनकी बुद्धि जो थी वो मोहित हो रही थी, इसलिए अर्जुन सीखना चाहते थे कि क्या उनके लिए श्रेयस है, क्या उनके लिए श्रेष्ठ है। तो इसकी चर्चा हम अगले लेक्चर्स में करेंगे। हरे कृष्ण, भगवान क्या उत्तर देते हैं।